ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा चुनाव अंतर्गत प्रतिनिधि सभा की प्रत्यक्ष प्रणाली के 165 क्षेत्रों में से 132 स्थानों के मत परिणाम हुए सार्वजनिक। नेपाली कांग्रेस 44, नेकपा एमाले 36 और नेकपा माओवादी केन्द्र 13 स्थानों में विजयी। बाजुरा की बूढ़ी गंगा में पुनः कल होगा मतदान। निर्वाचन आयोग ने कहा दोरखा और स्यांगजा के दो मतदान केन्द्रों के संबंध में चल रहा है अनुसंधान। प्रतिनिधि सभा की समानुपातिक चुनाव प्रणाली अंतर्गत अब तक की मतगणना के मुताबिक नेकपा एमाले पहले, नेपाली कांग्रेस दूसरे और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी तीसरे स्थान पर और चीन के शिनजियांग में एक बिल्डिंग की 15वीं मंजिल में आग लगने से 10 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा चुनाव अंतर्गत प्रत्यक्ष प्रणाली के अब तक 132 स्थानों के मत परिणाम साझा हो चुके हैं। बता दें कि प्रतिनिधि सभा चुनाव की प्रत्यक्ष प्रणाली अंतर्गत 25 जिलों की सभी सीटों पर सत्ता गठबंधन के उम्मीदवार विजयी हुए हैं। उन जिलों में भोजपुर, उखलढुंगा, खोटांग, सिंधुली, सिंधुपालचुक, धादिंग, गोरखा, मनांग, मुस्तांग, म्यागदी, बागलुंग, दांग, रोलपा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, डोलपा, जाजरकोट, दैलेख, सुरखेत, सल्यान, दारचुला, बझांग, डडिलधुरा, डोटी, संखुआसभा और अछाम शामिल हैं। निर्वाचन आयोग से प्राप्त विवरण के मुताबिक अब तक एमाले ने 8 और राप्रपा ने 1 जिले में अपना वर्चस्व बना रखा है। एमाले ने तापलेजुंग, पांचथर, धनकुट्टा, सोलोखुम्बू, पर्वत, अर्घाकांची, प्यूठान और बैतड़ी में एकल जीत हासिल की है। वहीं राप्रपा ने जुमला में एक सीट एकल रूप में जीती है। प्रतिनिधि सभा के 165 क्षेत्रों में से अब तक 132 क्षेत्रों के परिणाम आ चुके हैं। इसमें नेपाली कांग्रेस 44 सीटें जीत चुकी है, वहीं नेकपा एमाले 36, नेकपा माओवादी केन्द्र 13, एकीकृत समाजवादी 10, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 7 और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी 5 सीटें जीतने में कामयाब रहीं। इसी तरह लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी को 4, जनता समाजवादी पार्टी को 3, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिली है। वहीं राष्ट्रीय जनमोर्चा, मजदूर किसान पार्टी और जनमत पार्टी को एक एक स्थान में विजय मिली है। साथ ही अलग अलग स्थानों में 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। 3 जिलों के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में अभी भी मतगणना शुरू नहीं हो पाई है। स्यांगजा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2, बाजुरा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 और दोलखा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 में अब तक मतगणना शुरू नहीं हो पाई है। बता दें कि बाजुरा की बूढ़ी गंगा में कल पुनः मतदान होगा। वहीं निर्वाचन आयोग ने बताया है कि दोलखा और स्यांगजा के 2 मतदान केन्द्रों के संबंध में अनुसंधान हो रहा है। प्रतिनिधि सभा की समानुपातिक चुनाव प्रणाली अंतर्गत अब तक की मतगणना के मुताबिक नेकपा एमाले पहले स्थान पर हैं। बता दें कि नेकपा एमाले को कुल 15,19,281 मत प्राप्त हुए हैं, जबकि नेपाली कांग्रेस को 14,43,404 मत प्राप्त हुए हैं। इसी तरह समानुपातिक अंतर्गत ही राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को 6,75,998 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं नेकपा माओवादी केन्द्र को 6,42,730 मत प्राप्त हुए हैं। इसी तरह राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को 3,41,784 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं जनता समाजवादी पार्टी नेपाल को 1,81,335 और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी को 1,27,555 समानुपातिक मत प्राप्त हुए हैं। इसी बीच थोड़ी देर पहले प्राप्त जानकारी के मुताबिक रूपनदेही क्षेत्र नंबर प्रतिनिधि सभा की तरफ क्षेत्र नंबर 2 में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेल विजयी हुए हैं। एमाले उपाध्यक्ष पौडेल निकटतम प्रतिस्पर्धी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार गणेश पौडेल को 1,366 मतांतर से पराजित किया। बहुतरी क्षेत्र नंबर 3 के प्रतिनिधि सभा सदस्य पद पर लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा के अध्यक्ष महंत ठाकुर निर्वाचित हुए हैं। अध्यक्ष ठाकुर को 16,375 मत प्राप्त हुए। वहीं उनके निकटतम प्रतिस्पर्धी जनता समाजवादी पार्टी के हरिनारायण यादव को 14,325 मत प्राप्त हुए। इसी तरह कपिलवस्तु क्षेत्र नंबर 3 के प्रतिनिधि सभा में नेकपा एमाले के उम्मीदवार मंगल प्रसाद गुप्ता 3,637 मतांतर से विजयी हुए। गुप्ता को 22,619 मत प्राप्त हुए। वहीं उनके निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक प्रताप शाह को 18,982 मत प्राप्त हुए। स्यांगझा क्षेत्र नंबर एक में नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार राजू थापा 2,455 मतांतर से विजयी हुए। थापा को 31,999 मत प्राप्त हुए। वहीं उनके निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमाले के उम्मीदवार नारायण प्रसाद मरासिनी को 28,744 मत प्राप्त हुए हैं। प्रतिनिधि सभा की ओर नेपाली कांग्रेस से झापा निर्वाचन क्षेत्र नंबर एक में विश्व प्रकाश शर्मा, ओखलढुंगा निर्वाचन क्षेत्र नंबर एक में रामहरि खतिवाड़ा, रौथट चार में देव प्रसाद तिमल सेना, परसा दो में अजय कुमार चौरसिया, सिंधुली एक में श्याम कुमार खेमरे, रसुआ एक में मोहन आचार्य, काठमांडू एक में प्रकाश मान सिंह, काठमांडू तीन में संतोष चालीसे और काठमांडू चार में गगन कुमार थापा निर्वाचित हुए। काठमांडू दस में राजेन्द्र कुमार केसी, भक्तपुर क्षेत्र नंबर दो में दुर्लभ थापा क्षेत्री, ललितपुर क्षेत्र नंबर एक में उदय शमशेर राणा, मनांग क्षेत्र नंबर एक में टेक बहादुर गुरुंग, मुस्तांग क्षेत्र नंबर एक में योगेश गोचम थकाली, म्यागदी एक में खम बहादुर करबुजा, सुरखेत दो में हृदय राम थानी, अछाम दो में पुष्प बहादुर शाह, तारचुला एक में दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू और डडेल धुरा एक में शेर बहादुर देववा विजयी हुए हैं। इसी तरह एमाले की ओर से तापलेजुंग एक में योगेश कुमार भट्टाराय, झापा एक में केपी शर्मा ओली, धनकोटा एक में राजेन्द्र कुमार राय, सोलुखुम्बू एक में मानवीर राय, उदयपुर दो में अंबर बहादुर राय मांझी, सिरहा एक में रामशंकर यादव, परसा दो में राजकुमार गुप्ता, ललितपुर तीन में प्रेम बहादुर महर्जन, कास्की दो में विद्या भट्टाराय, पर्वत एक में पदम गिरी, गुलमी दो में गोकर्णराज वेस्ट, अर्घाखांची एक में टोप बहादुर राय मांझी, प्यूठान एक में सूर्य बहादुर थापा और बांके एक में सूर्य प्रसाद ठकाल निर्वाचित हुए हैं। इसी तरह माओवादी केंद्र की ओर से खोटांग एक में रामकुमार राय, सिंधुली दो में लेखनाथ दहाल, गोरखा दो में पुष्प कमल दहाल प्रचंड, रुकुम एक में पूर्ण बहादुर घरती मगर, रोलपा एक में वर्षमान पुन और जाजर कोट एक में शक्ति बहादुर बसनेत विजयी हुए हैं। इसी तरह एकीकृत समाजवादी से डोलपा में धन बहादुर बुढ़ा, रौथट एक से स्वयं माधव कुमार नेपाल, दैलख एक में अमर बहादुर थापा, अछाम एक में शेर बहादुर कुंवर, बझांग एक में भानुभक्त जोशी और डोटी एक में प्रेम बहादुर आले निर्वाचित हुए हैं। इसी तरह राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी से झापा तीन में राजेन्द्र प्रसाद लिंगदेन, बांके दो में धवल शमशेर राणा और जुमला एक में ज्ञान बहादुर शाही, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से काठमांडू सात में गणेश पराजुली, ललितपुर तीन में तोसीमा कार्की, सुनसरी क्षेत्र नंबर एक के प्रदेश सभा कमे नेकपा एमाले के उम्मीदवार रमेश कुमार बसनेत विजयी हुए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार उमेश थापा को 1,350 मतांतर से पराजित किया। बसनेत को 11,102 मत प्राप्त हुए जबकि कांग्रेस के थापा को 9,752 मत प्राप्त हुए। इसी तरह सुनसरी क्षेत्र नंबर दो प्रदेश सभा कमे एमाले के रेवती रमण भंडारी विजयी हुए हैं। उन्होंने इटहरी उप महानगरपालिका के पूर्व मेयर माओवादी केंद्र के द्वारिकालाल चौधरी को 2,683 मतांतर से पराजित किया। भंडारी को 14,528 मत प्राप्त हुए जबकि उनके प्रतिद्वंदी चौधरी को 11,845 मत प्राप्त हुए। रामेछाप क्षेत्र नंबर एक के प्रदेश सभा क में लोकतांत्रिक वाम गठबंधन के उम्मीदवार नेकपा माओवादी के नेता तारा नारायण श्रेष्ठ निर्वाचित हुए हैं। श्रेष्ठ ने 17,148 मत प्राप्त किए जबकि उनके निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमाले के शांति प्रसाद पौडेल को 15,157 मत प्राप्त हुए। सिरहा क्षेत्र नंबर एक प्रदेश सभा दो में जनता समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार गुप्ता निर्वाचित हुए हैं। उन्हें 16,239 मत प्राप्त हुए हैं जबकि उनके निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के अशोक कुमार यादव को 13,233 मत प्राप्त हुए। इसी तरह सिरहा क्षेत्र नंबर चार के प्रदेश सभा ख में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राम बाबू यादव निर्वाचित हुए हैं। यादव ने 9,763 मत प्राप्त किए जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी जनता समाजवादी पार्टी के सुरेश कुमार मंडल ने 9,398 मत प्राप्त किए। धनुषा के निर्वाचन क्षेत्र नंबर तीन ख में नेकपा एमाले के दीपेंद्र कुमार ठाकुर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के परमेश्वर शाह को 1,403 मतांतर से पराजित किया। ठाकुर ने 8,220 मत प्राप्त किए जबकि शाह को 6,817 मत प्राप्त हुए। कपिलवस्तु प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नंबर तीन के प्रदेश सभा ख में प्रजातंत्र राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के उम्मीदवार जानकी प्रसाद यादव विजयी हुए हैं। यादव ने अपने प्रतिद्वंदी नेकपा एमाले के उम्मीदवार रजाउर रहमान खान को 675 मतांतर से पराजित किया। यादव ने 8582 मत प्राप्त किए जबकि खान ने 7907 मत प्राप्त किए। झापा क्षेत्र नंबर 4 अंतर्गत प्रदेश सभा ख में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के उम्मीदवार भक्ति सिटौला 19045 मतों के साथ निर्वाचित हुए हैं जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार एक राज उप्रेती को 15071 मत प्राप्त हुए। कपिलवस्तु क्षेत्र नंबर 3 में प्रतिनिधि सभा सदस्य पद पर नेकपा एमाले के मंगल प्रसाद गुप्ता 22619 मतों के साथ विजयी हुए हैं। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी नेपाली कांग्रेस के अभिषेक प्रताप शाह को 18982 मत प्राप्त हुए। स्याङ्जा 1 में नेपाली कांग्रेस के राजू थापा 31999 मत प्राप्त कर विजयी हुए हैं। वहीं उनके निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमाले के नारायण प्रसाद मरासिनी को 28744 मत प्राप्त हुए। संखुआ सभा से प्रतिनिधि सभा सदस्य नेपाली कांग्रेस के दीपक खड़का 32158 मत प्राप्त कर विजयी हुए हैं। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी नेकपा एमाले के राजेन्द्र प्रसाद गौतम को 26719 मत प्राप्त हुए। कालीकोट क्षेत्र नंबर 1 में प्रतिनिधि सभा सदस्य पद पर नेकपा माओवादी केन्द्र के महेन्द्र बहादुर शाही 23087 मत प्राप्त कर विजयी हुए हैं। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी नेकपा एमाले के नागेन्द्र शाही को महज 16230 मत प्राप्त हुए। पालपा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 से प्रतिनिधि सभा सदस्य पद पर नेकपा एमाले के नारायण प्रसाद आचार्य 31103 मत प्राप्त कर विजयी हुए हैं। वहीं उनके निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस के ज्ञान बहादुर गहा को 20256 मत प्राप्त हुए। इसी तरह संखुआ सभा प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नंबर 1 से नेपाली कांग्रेस के दीपक खड़का विजयी हुए हैं 32158 मतों के साथ विजयी हुए हैं जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी नेकपा एमाले के राजेन्द्र प्रसाद गौतम को 26719 मत प्राप्त हुए। कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 से प्रतिनिधि सभा सदस्य पद पर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के अरुण कुमार चौधरी 21871 मत प्राप्त कर विजयी हुए हैं जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी नेकपा एमाले के केन्द्रीय सदस्य झपट बहादुर रावल को 16128 मत प्राप्त हुए। पालपा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 से प्रतिनिधि सभा सदस्य पद पर नेकपा एमाले के पोलिट ब्यूरो सदस्य ठाकुर प्रसाद गैरे 17 मत प्राप्त कर विजयी हुए हैं। वहीं उनके निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एकीकृत समाजवादी के सोम प्रसाद पांडेय को 23851 मत प्राप्त हुए हैं। मोरंग निर्वाचन क्षेत्र नंबर 6 से नेपाली कांग्रेस के नेता डॉ शेखर कोइराला 35224 मत प्राप्त कर विजयी हुए हैं। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी नेकपा एमाले के लाल बाबू पंडित को 22916 मत प्राप्त हुए हैं। मतगणना अभी जारी है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन के शिनजियांग में एक बिल्डिंग की 15वीं मंजिल में आग लग गई। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग गुरुवार देर रात लगी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इलेक्ट्रिक सॉकेट एक्सटेंशन के चलते आग लगी। पिछले 4 दिन में आग लगने की यह दूसरी घटना है। 22 नवंबर को हेनान प्रांत में एक निजी कंपनी के प्लांट में आग लग गई थी। इसमें 38 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया था। पुलिस ने कहा है कि आग लगने के कारणों की जांच चल रही है। इस इलाके में आग लगने की घटनाएं आम हैं। हालांकि पुलिस अक्सर लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करती रहती है। ऑस्ट्रेलिया में 4 साल पहले हुई एक महिला की हत्या के आरोप में भारत में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इस व्यक्ति का नाम रजविंदर सिंह है। 24 साल की टोया कोडिंगले का शव अक्टूबर 2018 में पाया गया था। इसे बेहद क्रूर हमला कहा गया था। इस महीने की शुरुआत में क्वींसलैंड की सरकार ने अभियुक्त की सूचना देने पर करीब 5.5 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। क्वींसलैंड पुलिस ने बताया कि अभियुक्त को शुक्रवार को भारतीय अधिकारियों ने दिल्ली में गिरफ्तार किया है। जल्द ही उसके ऑस्ट्रेलिया प्रत्यर्पण के लिए सुनवाई की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया लाने के बाद अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक मामला चलेगा। रजविंदर सिंह एक नर्स के तौर पर काम करते थे लेकिन टोया का शव मिलने के बाद वो अपनी नौकरी, पत्नी और 3 बच्चों को छोड़कर भाग गए। सिडनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनकी तस्वीर दिखी थी। टोया कोडिंगले 21 अक्टूबर 2018 को वान जेटी बीच पर अपने कुत्ते को घुमाने के लिए गई थी लेकिन वो वहां से वापस नहीं लौटी। अगले दिन महिला के पिता को उनका अधजला शव मिला था। मूल रूप से पंजाब में बटर कला के रहने वाले रजविंदर सिंह हत्या के दौरान इनिसफेल में रहते थे। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने संकेत दे दिए हैं कि कब से निलंबित अकाउंट को फिर से शुरू किया जाएगा। एलन मस्क ने गुरुवार को एक पोल किया था जिसमें उन्होंने निलंबित अकाउंट को सामान्य माफी देने का सवाल पूछा था। एलन मस्क ने ट्वीट किया था, क्या ट्विटर को निलंबित खातों के लिए सामान्य माफी की पेशकश करनी चाहिए, बशर्ते कि उन्होंने कानून नहीं तोड़ा हो या गंभीर स्पैम में लिप्त न हो। इस पर 72% हां और 27% ना में जवाब आए। अब एलन मस्क ने कहा है कि माफी अगले हफ्ते से शुरू होगी। उन्होंने ट्वीट किया, लोगों ने अपनी बात रखी, माफी अगले हफ्ते से शुरू। कुछ समय पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट से प्रतिबंध हटाने से पहले भी एलन मस्क ने एक पोल किया था। पोल के बाद ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को फिर से शुरू कर दिया गया था। अमेरिका में कैपिटल हिल हिंसा के बाद डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट निलंबित कर दिया गया था। एलन मस्क के नए ट्वीट के बाद कई निलंबित अकाउंट्स के फिर से शुरू होने की संभावना है। अकाउंट पर निलंबन हटाने को लेकर पहले मस्क ने कहा था कि वो कंटेंट मॉडरेशन के लिए एक काउंसिल बनाएंगे। इसके गठन से पहले वो न तो निलंबित खाते शुरू करेंगे और न ही कंटेंट को लेकर कोई बड़े फैसले लेंगे। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा चुनाव अंतर्गत प्रतिनिधि सभा की प्रत्यक्ष प्रणाली की 165 क्षेत्रों में से 132 स्थानों के मत परिणाम हुए सार्वजनिक। नेपाली कांग्रेस 44, नेकपा एमाले 36 और नेकपा माओवादी केन्द्र 13 स्थानों में विजयी। बाजुरा की बूढ़ी गंगा में पुनः कल होगा मतदान। निर्वाचन आयोग ने कहा, दोलखा और स्यांगजा के दो मतदान केन्द्रों के संबंध में चल रहा है अनुसंधान। प्रतिनिधि सभा की समानुपातिक चुनाव प्रणाली अंतर्गत अब तक की मतगणना के मुताबिक नेकपा एमाले पहले, नेपाली कांग्रेस दूसरे और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी तीसरे स्थान पर, और चीन के शिनजियांग में एक बिल्डिंग की 15वीं मंजिल में आग लगने से 10 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। शुभरात्रि।